का था, रूह वही रूप नया।
नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण इनकी ओर देखा और कहा, फोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक एक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फोन बजा। मेरा कॉर्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसलिए फोन इन्हें ही उठाना पड़ा। शायद बड़े भैया का था, मेरा हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधान करती वे सब ब्योरा दे चुके थे, फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तू मंजू, और रात को मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसी समय आ जाता। मुझे मालूम था भैया, इसलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह फिर मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र इतनी भागदौड़ करने की कहाँ रह गई है। और वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फोन पर उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संतोष हुआ। अच्छा तो हम लोग सुबह आते हैं, टेक केयर। भैया के फोन के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे, मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियां लेकर आई, तभी यह नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी कि जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगे, पर मैंने कह दिया कि दीदी अकेले बोर हो जाएंगी, वो अच्छी हो जाए फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटियां ना आ आके आपको तंग करती रहेंगी। आप रात भर की जागी हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे खोलोगी कब? 4 बजे जब चाय लेकर आऊंगी। और सचमुच वो हमें ताले में बंद करके चली गई। वह जब तक रहती है पटर पटर करती रहती है, घर भरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। वे एक क्षण मुझे घूरते रहे, फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है कि तुम्हें इस हालात में छोड़ के चला जाऊंगा? एक तरह से बात यही पर एक अच्छे बिंदु पर समाप्त हो जानी चाहिए थी, पर मेरे मन में तो प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वो हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। उसी ने मुझे चुप नहीं बैठने दिया। मैंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मेरी ऐसी हालत है तभी तो कह रही हूँ, रुक कर क्या करेंगे? वे आवाक होकर मुझे देखते रहे। What do you mean? कुछ नहीं, एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार आए थे और मैं संकोच के मारे मैं क्षण भर को चुप हो गई। उस दिन आप कितना नाराज हुए थे, कहा था कि फोन तो कर देती, बेकार मैं 250 रुपए का चूना लगा लिया। उनका चेहरा फक पड़ गया था। डूबती सी आवाज में बोले, उस बात को अब तक गांठ बांधे बैठी हो? यही क्यों, और भी बहुत सारी हैं। सारी गांठें खोलने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर आज तक बहुत अत्याचार करता रहा हूं। वेल, प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वो तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं उतनी बेचारी हूं नहीं। आपका तरीका ना काफी सोफिस्टिकेटेड है और अप्रोच तो बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मसलन अब कहाँ से शुरू करूँ? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। याद है शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आए थे, मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था, हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था, हार फूल संगीत उपहार मिठाई और लोग इतने कि पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, कितने का पड़ा? क्या मुझे ये पूछने का हक नहीं था? जरूर था, पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई। उस निभृत एकांत की अवहेलना कर आप इंदौर और भोपाल की कीमतों की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया था या GPF से लिया, और यह भी कि किश्तें पट गई हैं या अभी बाकी हैं। मेरे ख्याल से मुझे यह भी पूछने का हक था। हक 100% है, पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरा फ्लैट प्लस पॉइंट्स थे, पर वे ही अहम मुद्दा बनकर रह जाएंगे और मैं गौड़ हो जाऊंगी, ये नहीं सोचा था। अगली बार जब आप आए तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछा था। मैंने दोनों भाइयों के बेटों को फ्लैट और GPF के लिए नॉमिनेट किया था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इसमें गलत क्या है? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ कि लोग किस तरह से परेशान होते हैं। मैं भी जानती हूँ, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सपने देखती है, उसे वसीयत के बारे में सोचना अच्छा नहीं लगता। बदली हुई परिस्थिति में शायद मैं खुद इस विषय पर पहल करती, पर आपकी उतावली देख वितृष्णा हो आई। उसके बाद तो शोषण का एक अनवरत सिलसिला शुरू हो गया। मेरे टेलीफोन का बिल दुगना तिगुना आने लगा। सब लोग छेड़ते कि रात रात भर मियाँ से बात करती होगी। उन्हें क्या पता कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए एकदम मना किया हुआ है और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान को सारे दोस्तों के भाई भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं, सारे रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहीं से होती है। यह तो शायद तुम्हें भी पता होगा ना कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल संडेज को सस्ती पड़ती हैं और संडेज को मैं यहाँ होता हूँ, तो तुम क्या चाहती हो? हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसलिए चादरें और पर्दे यहीं से खरीदने चाहिए। यहाँ के रेडीमेड गारमेंट की मंडी भी बहुत मशहूर है, इसलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेने चाहिए। यहाँ जब तब गर्म कपड़ों की सेल लगती है, इसलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर यहीं से जाएगा। इसके अलावा और भी फरमाइशी चीज़ें हैं, जैसे फरियाली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी का सेट, कलर बॉक्स वगैरह। और मुझे ये भी मालूम है कि आपके घर पर यह कभी नहीं कोई जान पाया होगा कि ये फरमाइशें पूरी कौन कर रहा है। देखो अंजू, ज़्यादा एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊँगा तो सब चुकता कर जाऊँगा। हिसाब की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किया है। जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा वो घर भी अब मेरा है। इसलिए एहसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। राहुल को जन्मदिन पर डांस करना था, आप यहाँ का म्यूजिक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहाँ से VCD प्लेयर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई हर्ज होती है, इसलिए आप मेरा इमरजेंसी लैंप तक भोपाल ले गए। मैं शिकायत नहीं कर रही, आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया ना। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन किया गया। वाह वाह, सुनने में बुरा लगता है ना, शोषण कहूंगी तो और भी बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हो रहा था और वह मेरी समझ में भी आ रहा था। पर मैंने ना मन को बहला लिया था कि मैं घर की किस्तें चुका रही हूँ, घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, घर जो रिश्तों की मजबूत जमीन पर खड़ा हो, घर जो सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो, पर वो घर तो मुझे मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो मैं तुम्हारी इस तरह की साहित्यिक भाषा में बात नहीं कर सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं, आपका हुस्न परी वाला जुमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा हुआ है। कल रात भर मैं दर्द के मारे सो नहीं पाई, पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था जो उस रात आपने मुझे दिया था। ये घाव तो कल को भर भी जाएंगे, पर वो घाव ताउम्र हरा रहेगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज मैंने क्या कर दिया, वो हैरान थे। आज आप ये सिर्फ मेरे सच को परखने के लिए यहाँ चले आए, मान लो मैं चली ही गई होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, या मेरी ही क्या इमेज बनती। आपकी तो ये दूसरी शादी है, इतना तो आप भी समझते होंगे कि दाम्पत्य का आधार होता है विश्वास, और मिस्टर कश्यप आपने उसे ही नकार दिया, फिर शेष क्या रह गया। तभी दरवाजा खड़का, नीतू शायद चाय लेकर आई थी। हम दोनों अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आंख बंद करके लेटने को जी चाह रहा था और चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजाजी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे बताइए। व्यंगपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैं गरीब क्या बताऊं, अपने दीदी से पूछ लो, गेस्ट ऑफ ऑनर तो वो ही हैं। और इतना कहकर बाथरूम में घुस गए। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही, पर मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंघी फेरते हुए बोले, अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नजरों से उनकी ओर देखा। रतलाम वालों के आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ उसकी कोई खास जरूरत है नहीं। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी सेवा टहल कर रहे हैं, मेरी वजह से बेकार असुविधा ही हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीजें अगली बार ले आऊंगा अगर आया, वरना किसी के हाथ भिजवा दूंगा। मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले, लेटी रहो, मेरे लिए फॉर्मेलिटीज की जरूरत है नहीं, वैसे भी आदर मान बहुत कर चुकी तुम। सी ऑफ करने के लिए ना सही, दरवाजा बंद करने के लिए तो उठना ही होगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए जब तक दरवाजे पर पहुंची, ये दो मंजिल उतर कर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाजा बंद किया। इतने से श्रम से भी मैं हाँफ गई थी। देर तक बंद दरवाजे के सामने वहीं खड़ी रही जहां से मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। मुझे लगा वे मेरे घर से ही नहीं, जीवन से भी चले गए हैं। अलविदा मिस्टर कश्यप, मैंने कहा, आज से मेरे घर और मेरे मन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। घर का दरवाजा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस शादी को मैं इतनी आसानी से नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत श्रम और पैसा खर्च किया है, इसलिए शादी को तो मुझे ढोना ही पड़ेगा, पर मेरे मन का दरवाजा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी की लिखी कहानी बहुरी अकेला। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत करा पूजा श्रीवास्तव ने।